अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है अजीब फैसला। जस्टिस भगवत दयाल का आज जन्मदिन था। कोठी दुल्हन के समान सजाई गई थी। हर साल से ज्यादा सजावट देख लोगों को आश्चर्य हो रहा था। भगवत दयाल सज्जन तथा सहृदय थे। वो निष्पक्ष न्याय करते थे। घूस लेना वो हराम समझते थे। पीना उनका शौक था, पर उन्होंने कभी अतिक्रमण नहीं किया। भगवत दयाल खाओ पियो और खुश रहो के पक्षपाती थे। यही कारण था कि पत्नी के गुजर जाने के बाद वे फिर से विवाह के बंधन में नहीं बंधे। बाल बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं थी। इसी कारण उनका समस्त स्नेह अपने तीन मित्रों में बट गया था। ये मित्र बचपन से एक संग खेले कूदे थे। भगवत दयाल अपने इन मित्रों के विछोह की कल्पना मात्र से परेशान हो जाते थे। भाग्य से चारों एक ही शहर में रहते थे। भगवत दयाल के जन्मदिन के अवसर पर कोई मित्र बाहर भी रहता तो किसी प्रकार अवश्य पहुंच जाता था। आज भी सभी मित्र एकत्रित थे। तीनों ने जाम टकरा कर जैसे ही जस्टिस भगवत दयाल के गिलास से अपने गिलास टकराने चाहे, वैसे ही भगवत दयाल गंभीर वाणी में बोले, मित्रों, यहाँ की अदालत के नियमों को ताक पर रखकर आज मैंने अपना स्वयं का कानून बनाकर उस पर अमल किया है। यहाँ की अदालत को तो मैं गच्चा देकर जा रहा हूँ, पर ऊपर की अदालत में मुझे इस अपराध की क्या सजा मिलेगी मैं नहीं जानता। जीवन भर मैंने कानून की किताबों के अनुसार फैसला किया है, पर आज का फैसला मेरा निजी है। आप सब मेरे बचपन के मित्र हैं। मरने के बाद भी मैं आप सबसे बिछुड़ने की कल्पना मात्र से कांप उठता हूँ। तीनों दोस्तों ने भगवत दयाल से कहा, यार आज बिना शराब पिए ही बहक रहे हो। हेलो, पहले पियो फिर आगे बात करना। ये कहकर उन्होंने सबसे पहले भगवत दयाल को गिलास पकड़ाया और फिर उनकी लंबी उम्र की कामना करके गिलास एक दूसरे से टकराए। काफी शराब पीने के बाद सभी बोले, अब कहो क्या कहना चाहते हो। भगवत दयाल बोले, दोस्तों मुझे कैंसर है, जैसा कि मेरे डॉक्टर मित्र ने बताया है। ये कहकर उसने डॉक्टर की तरफ दृष्टिपात किया। डॉक्टर ने सहमति से सिर हिलाया। जस्टिस आगे बोले, एक साल से हर रात में मृत्यु की दहशत से कांप उठता हूँ। किसी दिन भी मेरे प्राण निकल सकते हैं। मृत्यु की विभीषिका ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। उसके पंजे से आज तक न कोई निकल पाया है और न ही मैं निकल पाऊंगा। पर ऊपर जाकर भी मैं तुम दोस्तों को खोना नहीं चाहता। मरने से पहले एक बहुत बड़ा पाप जो मैंने शराब के नशे में कर डाला था, उसी के बारे में बताकर मैं अपने हृदय का भार हल्का करके संसार से कूच करना चाहता हूँ। मैं खूनी, पापी तथा विश्वासघाती हूँ। ये कहकर उन्होंने करुण नेत्रों से डॉक्टर की तरफ निहारा। डॉक्टर की आंखों में अपने प्रति घृणा देखकर उनका मुंह लटक गया। बड़े कष्ट से भगवत दयाल बोले, डॉक्टर तुम्हारी पत्नी का कातिल मैं हूँ। वहां बैठे डॉक्टर के अलावा दोनों मित्रों की आंखें विस्मय से फैल गईं। डॉक्टर गंभीर स्वर में बोले, मुझे मालूम है। जस्टिस ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ निहारते हुए कहा, पर तुम्हें कैसे मालूम है कि हत्यारा मैं हूं, और जब तुम्हें मालूम था तो मुझे फांसी के तख्ते से क्यों बचा लिया। डॉक्टर बोले, भगवत दयाल, उस रात जब मैं घर लौटा तो मुझे मेरी पत्नी मृत मिली। थोड़ी देर मैं स्तब्ध खड़ा रहा, फिर सुराग के लिए मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। सभी चीजें यथास्थान थीं, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई थी। मुझे लगा ये चोर का काम नहीं हो सकता, जरूर कोई दूसरी बात है। ये सोचकर मैंने पत्नी की लाश के चारों तरफ घूमकर देखा, शायद कोई सुराग यहां मिल जाए। पत्नी की ब्लाउज में कोई चमकती चीज देखकर मैंने निकाली, वो टाई पिन थी, वो भी तुम्हारी। मैं सब समझ गया। मैं चाहता तो उसी समय पुलिस को बुलाकर तुम्हें सौंप देता, पर मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। फांसी पाने पर तुम्हें उतना कष्ट नहीं होता जितना हर रात मृत्यु की विभीषिका से होता है। तुम्हारी मौत धीरे धीरे तुम्हारे निकट पहुंचती जा रही है, ये जानकर तुम्हारी हर रात दहशत में बीतेगी। तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। एक अपराध जो तुम कर चुके हो उसके कारण हर रात तुम्हारी ग्लानि में बीतेगी और दूसरी तरफ मृत्यु की पैछल भी तुम्हें सुनाई देती रहेगी। कैंसर के रोगी का अंत कैसे होता है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम था। मृत्यु से पहले की दारुण पीड़ा से तड़पते लोगों को तुम देख चुके थे। तुम्हारा भी यही अंत होगा इस एहसास ने तुम्हें कभी शांति से एक रात भी सोने नहीं दिया था। जानते हो मेरी पत्नी ने मरने से पहले ये भेद क्यों नहीं खोला? वो चाहती तो तुम्हारा नाम लिख सकती थी, पर मरते मरते भी वो भेद इसलिए नहीं खोल पाई क्योंकि एक तो उसकी मृत्यु से मुझे दारुण पीड़ा होती, दूसरे अगर मुझे मालूम पड़ जाता कि ये कुकर्म तुमने किया है तो शायद मैं झेल नहीं पाता। वो ये भी जानती थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात एक तुम ही हो जो कि मुझे सांत्वना दे सकते हो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें अपने कातिल होने का एहसास रहेगा। तुमने किया भी वही, हर पल तुम मेरे दुख को कम करने की कोशिश करते रहे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ भगवत दयाल? पर याद रखो भगवत दयाल, तुम्हारी हमदर्दी में भी मुझे तुम्हारी मक्कारी नजर आई। बीच में ही भगवत दयाल बोले, डॉक्टर कुछ मेरी भी सुनो। मैं मानता हूँ मैंने अक्षम्य अपराध किया है। तुम तो जानते हो शुरू से मैं खाओ पियो और मौज उड़ाओ का पक्षपाती था। इसी कारण मैं विवाह के बंधन में पत्नी की मृत्यु के बाद फिर से नहीं बंधा। इतना जरूर है कि पीने का मुझे शौक है, पर मैंने कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अपने भरसक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे न्याय पर तो सभी को विश्वास था। मैं तो छोटे से जानवर को मारना भी पाप समझता था मेरे दोस्त, फिर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध मुझसे कैसे हो गया समझ में नहीं आता। शायद शराब जैसे दानों ने मुझसे ये घृणित कार्य करवाया। उस दिन मेरे मित्र जस्टिस आलोकनाथ आए थे, उनके संग मैंने पी ली। वो स्वयं भी पीते जा रहे थे और मुझे भी पिलाते जा रहे थे। मैंने बहुत मना किया तो वे हंसकर बोले, यार आज पी लो, फिर तो मेरा तबादला हो जाएगा, न जाने फिर कब ऐसा मौका हाथ आएगा। शायद मुझसे ऐसा जघन्य अपराध होना था, इसी कारण मेरी बुद्धि भी कुंठित हो गई और मैं काफी पी गया। आलोकनाथ के जाने के पश्चात मुझे लगा कि काफी गर्मी हो रही है, क्यों ना थोड़ी देर बाहर टहल लिया जाए। ये सोचकर मैं टहलने निकल गया। रास्ते में तुम्हारे घर की रोशनी देखकर मैंने सोचा थोड़ी देर तुमसे गपशप कर ली जाए। मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा भाभी ने खोला। मुझे देखकर वो बोली, भाई साहब आपके डॉक्टर भाई किसी मरीज को देखने गए हैं, आते ही होंगे, आप बैठिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी उस समय झीनी नाइटी में थी, शराब के नशे में वो मुझे भाभी न लग कर कोई दूसरी औरत नजर आ रही थी। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, मैंने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया था। भाभी बोली, भाई साहब सिर में दर्द हो रहा है। मैंने सहमति में सिर हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। भाभी बोली, भाई साहब एक मिनट रुकिए, मैं अभी बाम लाई। ये कहकर बेचारी भाग कर बाम लाई और जैसे ही मुझे पकड़ाने लगी मैं उस पर पशु के समान टूट पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फट सी गईं, वो मुझे फटी फटी निगाहों से निहारने लगी। फिर उसकी आंखों में मुझे असीम घृणा दिखाई दी। मैं उसे छोड़कर लड़खड़ाते हुए घर पर आकर पलंग पर आ गिरा। फिर मुझे होश नहीं रहा। सुबह मुझे पता चला कि भाभी ने आत्महत्या कर ली। काश मैं ज्यादा शराब पीने का दुष्परिणाम पहले जानता तो कभी भी न पीता। अपनी देवी जैसी भाभी को खोकर क्या मैं एक रात भी चैन से सो पाया? भगवत दयाल की आंखें भर आई और उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। थोड़ा रुक कर वो बोले, मैं उसी दिन तुमसे सच सच सब बताकर अपना गुनाह कबूल कर लेता, पर मैं जानता था कि ये बताने के बाद मैं तुम्हारी दोस्ती से हाथ धो बैठूंगा। वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। तुम ही तो मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरे दुख सुख के साथी। तुम्हें खोकर मैं क्या एक पल भी शांति से रह पाता? हर रात भाभी की चीखें तभी से मुझे पागल बना डालती हैं। मैं पीते पीते बेहोश सा हो जाता हूँ, जिससे मुझे उन चीखों से छुटकारा मिल जाए। उनकी घृणा से भरी आंखें हर रात मेरा पीछा कर मुझे धिक्कारती रहती हैं। मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठता हूँ। ऊपर से जब से मुझे ये पता चला कि मुझे कैंसर है तो मैं इस जीवन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर अकेले नहीं अपने मित्रों के संग, क्योंकि वहां भी तुम सबसे बिछुड़कर मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकेगी। हमने जीवन संग संग जिया है तो मृत्यु को भी एक संग गले लगाएंगे। वो शराब जो हम सब ने पी है उसमें विष पड़ा है। एक घंटे बाद हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। एक साथ ही हम चारों की आत्मा इस संसार से कूच करेगी और जहां भी ईश्वर हमें भेजेगा संग संग ही जाएंगे। डॉक्टर बोला, भगवत दयाल, तुमने कैंसर जैसे रोग से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या की योजना बनाई थी, पर तुम्हें तो कैंसर है ही नहीं। पत्नी की मौत के बाद मैं तुम्हें सजा देना चाहता था जिससे तुम हर पल तिल तिल कर मरो। मैं फांसी जैसी आरामदेह मौत तुम्हें नहीं देना चाहता था। इसी कारण मैंने झूठ बोला था कि तुम्हें कैंसर है। अरे तुम्हें तो कोई मामूली बीमारी भी नहीं है, तुम तो अभी वर्षों जीते। मैंने क्या, तुमने अभी अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए हैं, पर इन दो निर्दोष व्यक्तियों की हत्या तुमने क्यों की? भगवत दयाल, जरा इनकी आंखों में मौत का खौफ देखो। तुम्हें अपने दोस्तों पर जरा भी दया नहीं आई? इनकी पत्नी है, बच्चे हैं, उन पर क्या बीतेगी इसका तुम्हें ख्याल भी नहीं आया? ऊपर से दोस्ती का दावा करते हो, धिक्कार है तुम्हें। तुम सब पापी, संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। अभी तक तुम अपनी दयालुता तथा दोस्ती की गाथा सुना रहे थे, क्या तुम्हारी नजरों में यही दोस्ती की परिभाषा है? ये सही है कि यहाँ की अदालत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर एक दूसरी अदालत भी है जहाँ तुम्हारा न्याय होगा। उस समय तुम जस्टिस भगवत दयाल न होगे बल्कि एक हत्यारे होगे, और न्याय की कुर्सी पर कोई दूसरा ही बैठा होगा। वो तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, पर वहां तुम्हारी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। मृत्यु की बेला में मैं तो तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं भी अपराधी हूं, पर मेरा अपराध अक्षम्य नहीं है। खैर जाने दो दोस्तों, अब तो हम सब मृत्यु के बहुत निकट पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद तो हम चारों इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। क्यों ना बैर भाव छोड़कर एक हो जाएं? ये कहकर गोल मेज पर चारों ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए। धीरे धीरे उनका सिर टेबल पर टिक गया। सुबह जब नौकर चाय लेकर आया तो चारों को मृत देखकर चीख पड़ा। देखते ही देखते दूसरे नौकर भी आ गए। फौरन पुलिस को फोन किया गया। एक साथ चारों मौतें सुनकर भगवत दयाल की कोठी पर भीड़ एकत्र होने लगी। वैसे भी भगवत दयाल के निष्पक्ष न्याय तथा सज्जनता के प्रति लोगों की उन पर अगाध श्रद्धा थी। डॉक्टर ने जब परीक्षण किया तो पता चला कि शराब में तेज विष मिला था। ये विष आत्महत्या करने के लिए मिलाया गया था या साजिश थी, पर यह कोई नहीं जान पाया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने लाशों के मुंह ऊपर किए तो चार आंखों में अपार शांति थी, पर चार दूसरी आंखें विस्मय तथा खौफ से फटी पड़ी थीं। इंस्पेक्टर ने उन आंखों पर हाथ रख कर उन्हें बंद कर दिया। जीवन भर उस न्यायाधीश ने निष्पक्ष न्याय किया था, पर अंत समय का न्याय कितना अजीब तथा अमानवीय नहीं रहा? जस्टिस भगवत दयाल का ये पागलपन था या मित्रों के प्रति असीम प्यार?
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparadio.com की प्रस्तुति।